स्वागत है आपका नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। तारीख 19 जुलाई और दिन मंगलवार। ट्रंप के समर्थन और विरोध में हुए प्रदर्शनों के बीच रिपब्लिकन पार्टी का राष्ट्रीय कन्वेंशन शुरू। बिहार में नक्सलियों सुरक्षाकर्मियों के बीच मुठभेड़ में कई लोगों के मारे जाने की आशंका। राजनाथ सिंह ने कहा, कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत समस्या के समाधान के यही हैं तीन सूत्र। प्रियंका गांधी पर बीबीसी की खास पेशकश।
जिस प्रतिभा की वो धनी है उसका भी उपयोग उन्होंने नहीं किया। चुनाव के मौके पर वो आ जाती हैं, फिर 5 साल खामोश हो जाती, पता ही नहीं चलता कहाँ है। जो कह जाती हैं वो भी पूरा नहीं करती।
अखबारों की समीक्षा और भी बहुत कुछ, लेकिन उन सबसे पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, विनीत खरे से। प्रदर्शनों और हिंसा की आशंका के बीच अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी का 4 दिवसीय राष्ट्रीय कन्वेंशन क्लीवलैंड में शुरू हो गया है, जहां डोनाल्ड ट्रंप को रिपब्लिकन पार्टी का उम्मीदवार घोषित होने से रोकने की आखिरी कोशिश नाकाम हो गई है। लोगों को मन मुताबिक उम्मीदवार चुनने देने का प्रस्ताव उस वक्त खारिज कर दिया गया जब 3 राज्यों ने इसका समर्थन नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप की उम्मीदवारी को लेकर पार्टी में टकराव है। कोलोराडो की मेलनी स्टर्म ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप उसी संस्थान का हिस्सा बन गए हैं जिसकी वो आलोचना करते थे।
Those who think that Trump is the anti-establishment candidate should just behold what happened here today.
जिन्हें लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप एंटी एस्टैब्लिशमेंट उम्मीदवार हैं, वो देख लें कि किस तरह रिपब्लिकन उम्मीदवार ने, जिसे मात्र 44% प्राइमरी वोट मिले, उसने अपने ही लोगों को कुचल दिया। मेलनी स्टर्म के शब्द। तुर्की के राष्ट्रपति रचप तैयब अर्दुआन ने कहा है कि ये कहना कि पिछले हफ्ते सत्ता पलट की कोशिश के बाद वो अपने विरोधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं अपमानजनक है। अमरीका के टीवी चैनल CNN से बातचीत में अर्दुआन ने दोहराया कि उनका इरादा मौत की सज़ा को बहाल करना है। इससे पहले जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्कल और अन्य यूरोपीय नेताओं ने चेतावनी दी थी कि अगर मौत की सज़ा को दोबारा तुर्की में जगह दी जाती है तो तुर्की यूरोपीय यूनियन में शामिल नहीं हो पाएगा। अमरीका ने तुर्की से कहा है कि वो सत्ता पलट की कोशिश का संतुलित जवाब दे। उधर सत्ता पलट की नाकाम कोशिश के बाद कई वरिष्ठ सैन्य प्रमुखों में से एक तुर्की के पूर्व वायुसेना प्रमुख जनरल अकिन आस्टक को अदालत में पेश किया गया, जहां उन्होंने सत्ता पलट में शामिल होने से इनकार किया। गुजरात के मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने पिछले हफ्ते ऊना में दलितों पर कथित हमले के मामले में CID जांच के आदेश दे दिए हैं और मामले की तेज सुनवाई के लिए एक विशेष अदालत बनाने की घोषणा की है। इस बीच घटना के विरोध में 7 लोगों ने आत्महत्या का प्रयास किया। उधर राजकोट में दलितों ने विरोध प्रदर्शन किए हैं। बिहार और औरंगाबाद जिले में सुरक्षाकर्मियों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में कम से कम 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। कल देर रात बिहार के IG ऑपरेशंस कुंदन कृष्णन ने BBC को बताया था कि यह मुठभेड़ CRPF के विशेष दस्ते कोबरा और नक्सलियों के बीच हुई। जर्मनी में अधिकारियों का कहना है कि 17 साल के एक अफगान आप्रवासी ने दक्षिणी शहर वुजबर्ग के निकट एक ट्रेन में सवार 4 लोगों पर हमला किया है। हमलावर के पास कुल्हाड़ी और चाकू था और 3 में से 4 पीड़ितों की हालत नाजुक है। 14 अन्य यात्रियों को इस घटना से सदमा पहुंचा, जिनका इलाज किया जा रहा है। बवेरिया के आंतरिक राज्य मंत्री जोएकिम हर्मन ने कहा कि हमलावर ने जब पुलिस अफसरों पर हमला किया तो उसे गोली मार दी गई। हमले की वजह भी साफ नहीं है, लेकिन जर्मनी में BBC संवाददाताओं का कहना है कि जर्मनी में शंका है कि इस हमले पर प्रतिक्रिया नीस में हुए हमले पर हुई प्रतिक्रिया की तरह हो सकती है। BBC समाचार।
एक बार फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। आज है जुलाई की 19 तारीख और दिन मंगलवार। कार्यक्रम की शुरुआत अमेरिका से। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी का राष्ट्रीय कन्वेंशन ओहायो के क्लीवलैंड में शुरू हो चुका है। 4 दिनों तक चलने वाले इस कन्वेंशन में डोनाल्ड ट्रंप को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति चुनाव के लिए पार्टी का उम्मीदवार चुन लिया जाएगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की उम्मीदवारी को लेकर पार्टी में भारी मतभेद है। 2 पूर्व राष्ट्रपति बुश बाप बेटे ने ट्रंप का विरोध करते हुए कन्वेंशन का बाइकॉट कर दिया है। कन्वेंशन शुरू होने से पहले ट्रंप के समर्थकों और विरोधियों के बीच भी संघर्ष हुआ। एक महिला एली मे कह रही थी,
He does not have the message of the way that America should be in the 21st century. His problem is that he's
21वीं सदी में अमेरिका को जैसा होना चाहिए, ट्रंप के पास ऐसा कोई संदेश नहीं है। उनकी समस्या ये है कि वो अमेरिकी लोगों को डरा कर उनका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ये कहना बहुत आसान है कि हम लोग अमेरिका को दोबारा महान बनाएंगे, लेकिन इस देश के सामने जो असल समस्याएं हैं उनका हल तलाशना बहुत मुश्किल है। ये कह रही थी एली मे। एक दूसरी महिला फिलिस्तीन आयात कहती हैं, लेकिन इससे पहले सीधे चलते हैं ब्रजेश उपाध्याय के पास, जो इस वक्त टेलीफोन लाइन से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, क्या आप वहां पहुंच चुके हैं जहां पर कन्वेंशन चल रहा है?
जी हाँ बिल्कुल इकबाल, मैं अभी बिल्कुल कन्वेंशन सेंटर के बाहर खड़ा हूं, क्योंकि अंदर बहुत ज्यादा शोर है। रिपब्लिकन पार्टी के जो नामी गिरामी लोग हैं उनमें से कई लोग इस समय भाषण दे रहे हैं, और ये आज पहला दिन है क्योंकि यहाँ अभी भी सोमवार की शाम है। अब से कुछ ही देर में अंदाजा है कि डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप वो भाषण देंगी, और एक तरह से आप कह सकते हैं जो ट्रंप का अपना अंदाज है कि उन्होंने प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए आज वो खुद भी मौजूद होंगे। कहा जा रहा है कि जब मेलानिया ट्रंप अपना भाषण देंगी, उन्होंने ट्वीट के जरिए ये बात कही है जो उनका अपना एक अंदाज है उसी में, और जो कि आमतौर पर उम्मीदवार जो होता है वो आखिरी दिन अपना भाषण देता है और उसी दिन वो पेश होता है, लेकिन वो पहले दिन भी पहुंच गए हैं। और अंदाजा ये भी है कि ट्रंप के बेटे और उनकी बेटी भी आने वाले दिनों में कल और परसों वो लोग भी भाषण देंगे। तो और जैसा कि आपने शुरुआत में कहा कि पार्टी के जो कई नामी गिरामी लोग हैं, दिग्गज हैं, जॉर्ज डब्ल्यू बुश हुए, जॉन मैकेन हुए जो 2008 में उम्मीदवार थे, 2012 के उम्मीदवार मिट रोमनी थे, वो सब इसमें भाग नहीं ले रहे हैं क्योंकि ट्रंप की नीतियों से वो इतने खफा हैं और वो कह रहे हैं कि पार्टी बहुत ही गलत दिशा में जाने जा रही है।
तो ब्रजेश, क्या ये जो दिग्गज हैं रिपब्लिकन दिग्गज जो नहीं आ रहे हैं, क्या उसका कोई असर उम्मीदवारी पर भी पड़ सकता है, या अगर मैं ये कहूँ कि उम्मीदवारी पर न भी पड़े तो उनके चुनावी समीकरण पर भी पड़ सकता है?
उम्मीदवारी पर देखिए, पहली बात तो ये हुई कि आज कोशिश ये हुई थी खास के उनके खिलाफ जो लोग हैं पार्टी में, कि वो जब फ्लोर पर औपचारिक रूप से वोटिंग शुरू होती है, आपको याद होगा प्राइमरी चुनाव के दौरान जो हर जिस राज्य में आप जीतते हैं तो आपको प्रतिनिधि मिलते हैं, डेलीगेट्स दिए जाते हैं, तो ये बात हो रही थी कि ये कानून में ये बदलाव हो कि प्रतिनिधियों को उसी उम्मीदवार को वोट देने के लिए मजबूर ना होना पड़े और कन्वेंशन के दिन ये आखिरी फैसला हो, लेकिन उस पे ट्रंप की जो कैंपेन टीम है वो लोग सहमत नहीं हुई और पार्टी की जो हाईकमान है वो भी उस पर सहमत नहीं हुई। तो एक तरह से अब उनकी उम्मीदवारी को आप कह सकते हैं कि नहीं खतरा है, लेकिन चुनावी समीकरण पर जरूर इसका असर पड़ेगा अगर पूरी पार्टी एकजुट नहीं होती है। तो ये जो बड़े बड़े नेता हैं इनके जो समर्थक हैं और वो साथ नहीं आएंगे, और दूसरी तरफ ये नेता उनके लिए उस तरह से कैंपेनिंग नहीं करेंगे जैसा उनके विरोधी जो हैं हिलरी क्लिंटन, उनके लिए बराक ओबामा होंगे, बिल क्लिंटन होंगे, जो भी डेमोक्रेटिक पार्टी के बड़े बड़े नाम हैं वो आकर के उनके लिए कैंपेनिंग करेंगे, वो चीज ट्रंप की के साथ नहीं होगा। लेकिन ट्रंप का जवाब ये है कि मैं अब इस नई पार्टी की जो बुनियाद है मैं अपने अंदाज में रखूंगा, ये जो लोग हैं ये लोग बीती हुई कहानी है, इनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है
जी।
बाकी यहाँ पर बता दूं कि अभी आप हेलीकॉप्टर की आवाज सुन रहे हैं, ऐसी सुरक्षा, ऐसी सिक्योरिटी है क्लीवलैंड में जैसे लग रहा है कि जिस इलाके में मैं खड़ा हूँ जैसे मार्शल लॉ लगा हुआ हो। हर मकान के छत पर, हर बड़ी बड़ी इमारत के छत पर स्नाइपर्स खड़े हैं बंदूक लेकर के, क्योंकि एक दहशत का भी माहौल है कि कहीं पेरिस की तरह का या ऑरलैंडो की तरह का कहीं कोई उस तरह का हमला नहीं हो जाए। और इसके अलावा जो कुछ आवाजें आपने सुनाई, हर तरह के विरोध प्रदर्शन यहाँ पर हो रहे हैं, मुसलमान गुट कई हैं जो जमा है क्योंकि उनके जो मुसलमानों के खिलाफ बयान दिए उसको लेकर के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, ब्लैक लाइव्स मैटर की आवाज आपने अभी भी सुनवाई, तो थोड़ा काफी हद तक तनाव वाला माहौल भी है। लेकिन फिलहाल अभी कन्वेंशन चल रहा है और सारी सीटें भी जो आमतौर पर खचाखच भर जाती हैं वो नहीं भरी हैं, लेकिन हो सकता है ये पहला ही दिन हो और आने वाले दिनों में हम और ज्यादा यहाँ पर भीड़ देखें।
बहुत शुक्रिया ब्रजेश उपाध्याय आपका इस तमाम जानकारी के लिए।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
और अब बात भारत की, सबसे पहले चलते हैं बिहार। बिहार के औरंगाबाद ज़िले में कल नक्सलियों और सीआरपीएफ के खास दस्ते कोबरा के बीच हुई मुठभेड़ में दोनों तरफ से कई लोग मारे गए हैं। सबसे पहले सुनते हैं कि इस बारे में कल रात क्या कहा आईजी ऑपरेशंस कुंदन कृष्णन ने।
बंदा हिल फॉर्मेशन है जिसमें नक्सलियों का गढ़ बना हुआ है, उसी में ऑपरेशन चल रहा है। एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है बिटवीन कोबरा, दैट इज कॉम्बैट बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन, अ स्पेशल विंग ऑफ द सीआरपीएफ एंड अ ग्रुप ऑफ नक्सलाइट। सम नक्सल्स हैव बीन किल्ड। टिल नाउ वी हैव आल्सो दो हमारे जवान शहीद हुए हैं, चार इंजर्ड हुए हैं जिनको बाहर निकाला गया है। अभी अंदर कोमिंग चल रही है, हो सकता है हमारे भी और कुछ कैजुअलिटी है, यही सिचुएशन।
ये थे आईजी ऑपरेशंस कुंदन कृष्णन। और इस वक्त सीधे चलते हैं पटना, जहां टेलीफोन लाइन पर मौजूद है हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज सहाय। नीरज, जैसा कि आपने सुना कि कुंदन कृष्णन जो आईजी ऑपरेशंस, वो कह रहे थे कि कुछ और लोगों के मारे जाने की आशंका है, अभी ताज़ा क्या जानकारी है आपके पास?
जी विनीत, अभी मेरी बात हुई हेडक्वार्टर के एडीजी हेडक्वार्टर सुनील कुमार से, जो कल रात में कुंदन कृष्णन जो बता रहे हैं आईजी ऑपरेशंस कल रात के फिगर, दो डेड बॉडीज के बारे में पुलिस के साइड से, वो बढ़कर 8 हो गए हैं। क्योंकि रात हो गई थी और जंगली इलाका है तो वहां पर रात में सर्च ऑपरेशन देर में दिक्कत हो रही थी, लेकिन सुबह में जब से जैसे जैसे उजाला हुआ तो अब तक 10 डेड बॉडी जो हैं वो कोबरा बटालियन और पुलिस के जवानों के साइड से वाले मिले हैं। उसके अलावा 3 नक्सलियों के बॉडी भी रिकवर हुए हैं और भारी मात्रा में असलहे और गोले बारूद भी ये हुए हैं। घटना कल 11:30 दोपहर में शुरू हुई, तब एक के बाद एक लगातार कई लैंडमाइन ब्लास्ट हुए और पुलिस फोर्स वहां पर कॉम्बिंग ऑपरेशन और सर्च ऑपरेशन के लिए गई हुई थी। इसी दौरान जो लगातार लैंडमाइन ब्लास्ट हुए उसकी वजह से काफी कैजुअलिटी हुई है। शाम होने के बाद रात हो गई थी, अंधेरा काफी हो गया था, इसलिए एग्जैक्ट फिगर कैजुअलिटीज का नहीं आ पा रहा था, जो कि आज सुबह मेरी बात हुई एडीजी हेडक्वार्टर सुनील कुमार।
यानी नीरज, मैं अपने बीबीसी के सुनने वालों को एक दफा फिर बताना चाहूंगा कि क्या 10 जो सीआरपीएफ के जवान और 3 नक्सली, यानी इस पूरे ऑपरेशन में 13 लोगों के मारे जाने की आधिकारिक पुष्टि कर दी गई है, क्या मैं सही कह रहा हूँ?
जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी, ये आधिकारिक पुष्टि अभी सुबह हो गई
जी। और क्या जो भी आशंका जताई जा रही थी कि और अधिक संख्या हो सकती है, वो पूरी तरह से अब मुकम्मल हो चुका है या अभी कुछ और खबर आ सकती है इस ऑपरेशन के हवाले से?
नहीं, अभी मुकम्मल हो चुका है क्योंकि खुद एडीजी हेडक्वार्टर ने ये कंफर्म कर दिया है। और रात में एग्जैक्ट फिगर इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि अंधेरा था और सुबह ये कंफर्म हो चुका है।
बहुत बहुत शुक्रिया नीरज सहाय आपका इस तमाम जानकारी के लिए।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
और बिहार के बाद अब चलते हैं भारत प्रशासित कश्मीर। भारत सरकार ने भारत प्रशासित कश्मीर में हुई हिंसा में 40 से अधिक नौजवानों की मौत पर अफसोस जताया है। संसद में बयान देते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कल कहा कि सरकार को कश्मीर में आम लोगों के साथ हमदर्दी है, लेकिन चरमपंथियों से सख्ती से निपटा जाएगा। सुनिए एक रिपोर्ट संदीप सोनी की।
मानसून सत्र के पहले दिन संसद के उच्च सदन राज्यसभा में कश्मीर के मौजूदा हालात पर बहस के दौरान विपक्षी दलों ने बीते दिनों सुरक्षा बलों के हाथों 40 से अधिक नौजवानों की मौत पर अपना विरोध जताया। बहस में हिस्सा लेते हुए कम्युनिस्ट पार्टी के नेता डी राजा ने सियासत में सियासी सुलह पर जोर दिया और कहा कि भारत को पाकिस्तान से बातचीत शुरू करनी चाहिए। डी राजा कह रहे थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच समग्र बातचीत होनी चाहिए, दोनों देशों को बातचीत शुरू करनी चाहिए। वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने हिंसा के लिए खुद कश्मीरियों को ही जिम्मेदार बताते हुए सुरक्षा बलों का बचाव किया।
ये वानी जो है उसने भी अनेक निरपराध लोगों को मारा है, पुलिस कर्मियों को मारा है, जवानों के ऊपर हमले किए हैं। अगर ऐसा एक भयंकर आतंकवादी मारा जाता है और उसके मातम के लिए, उसके समर्थन के लिए भीड़ बेकाबू होकर रास्ते पे आती है, सड़क पे आती है, वैली में हिंसाचार होता है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है?
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक सिंघवी ने स्पेन और नॉर्दर्न आयरलैंड के उदाहरण के साथ कश्मीर मसले का जिक्र करते हुए ये बताने की कोशिश की कि किस तरह लगातार सियासी कोशिशों से समस्या का समाधान तलाशा गया।
Those were militarily, administratively on the ground worse situations, but if we hardly hear of them today.
अभिषेक सिंह भी कह रहे थे कि इन दोनों जगहों पर प्रशासन और सेना दोनों लिहाज से बदतर हालात थे, लेकिन आज वहां अमन है जो लगातार सियासी कोशिशों से ही मुमकिन हो पाया है। वहां लोगों को खुद निर्णय लेने का अधिकार दिया गया और सही मायनों में हमदर्दी भरा रुख अपनाया गया। हमें कश्मीर में भी कुछ ऐसा ही करना होगा। दूसरी ओर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उनकी सरकार को कश्मीर में हुई मौतों का दुख है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी सरकार कश्मीर मसले के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वो चरमपंथियों के साथ सख्ती से पेश आएगी।
कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत, कश्मीर की समस्या के ये तीन सूत्र हैं समाधान के, यह आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा और आज के हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी उसी को दोहराया है और आज भी हम उसी पर कायम हैं। लेकिन उपसभापति महोदय, कश्मीरियत की जमहूरियत में स्थान यदि हो सकता है तो केवल इंसानियत का स्थान हो सकता है, हैवानियत का कोई स्थान नहीं। देखिए, सिक्योरिटी फोर्सेस के मारे जाने के बाद यदि कोई जश्न मनाता है, क्या उपसभापति महोदय से इंसानियत कहेंगे?
भारत प्रशासित कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर बुरहान वानी की मौत के बाद हुए विरोध प्रदर्शनों में कश्मीर में बीते दिनों 40 से अधिक नौजवान सुरक्षा बलों के साथ झड़पों में मारे गए हैं। भारत सरकार अब कश्मीरी जनता का भरोसा हासिल करने के लिए बातचीत के इरादे से तमाम सियासी दलों का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही कश्मीर भेजने पर विचार कर रही है।
ये थे संदीप सोनी। और जैसा कि आपने सुना कि बुरहान वानी के मारे जाने के बाद से शुरू हुए हिंसक प्रदर्शन में अब तक 40 से ज़्यादा आम नागरिक मारे जा चुके हैं, 50 से ज़्यादा लोगों की आंखों में गंभीर चोटें आई हैं। लेकिन घाटी में बीते कुछ दिनों से अखबार भी नहीं छप रहे हैं, मोबाइल फ़ोन भी काम नहीं कर रहे हैं। मानवाधिकार कार्यकर्ता इसे सरकारी सेंसरशिप का नाम दे रहे हैं। हमारी सहयोगी दिव्या आर्य ने जाने माने समाज शास्त्री शिव विश्वनाथन से बात की और इस मामले में उनकी राय जाननी चाही।
कश्मीर इंडिया का एक भाग है, यदि एक भाग है तो उसको इस तरह का ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। ये एक तरह का दबाव है। ये लोग सोचते हैं कि आप प्रोटेस्ट मूवमेंट को आउटसाइड द डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क देखने से वो टेररिस्ट बन जाती है, वैसे नहीं है। यहाँ काफी साधारण लोग बोल रहे हैं कि कश्मीर में कुछ ठीक नहीं है, सुन लीजिए और बात कर लीजिए। यहाँ सुनने के लिए तैयार है न बात करने के लिए तैयार है, सिर्फ इमरजेंसी के समान सिचुएशन डिक्लेयर कर देते हैं। तो सेक्शन 144 टेलीफोन कट करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जितने लोग हैं, जो यंगर पीपल हैं, ये लोग सब सोचते हैं कि व्हाई आर वी बीइंग ट्रीटेड दिस वे। तो एक सेंस है कि कश्मीर इज नॉट बीइंग ट्रीटेड फेयरली। इसमें एक चीज साफ है जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कुछ नई सोच नहीं है।
सरकार का ये कहना है कि वहां पर जो मीडिया है वो एक तरफा रिपोर्टिंग करता है या एक थॉट को ज्यादा अहमियत देता है।
जो भी क्रिटिकल है, जो भी नेगेटिव है, बैन करना चाहिए, तो आधा इंडिया बंद हो जाएगा। कल आप वही क्राइटेरिया अप्लाई कीजिए हर एक न्यूज़पेपर को, सेंसरशिप से एक्साइटमेंट कम होगा, ये और भी बढ़ेगा। मेरे ख्याल ये सरकार के पास न इमेजिनेशन है न नॉलेज है।
इसका एक एस्पेक्ट ये भी है कि वहाँ जो हो रहा है उसको लेकर जो नेशनल अखबार हैं, जो दिल्ली से छपते हैं, उनमें तो इस तरह का जो पैनिक मुझे आपकी आवाज में और आपके एनालिसिस में लग रहा है वो यहाँ तो नहीं दिख रहा। कोई ब्लैक पेज नहीं कोई छाप रहा, कोई टीवी पे कोई ब्लैकआउट नहीं कर रहा है, इन सॉलिडारिटी इसको कैसे देखते हैं?
देखिए जी, सॉलिडारिटी उस तरह से नहीं होगा। इस सरकार से कुछ तो उम्मीद था, जब सब उम्मीदें टूट रही है तो सोचना पड़ेगा कि इनका पॉलिसी कुछ अलग है, नया है, इसमें न केयर न कंसर्न है, तो क्या है?
क्या आप आने वाले दिनों में इस दिशा में सरकार को जाते हुए आप देखते हैं?
जितने सरकार है इंडिया में वो सब नॉलेज प्रूफ है, वो किसी का बात न सुनेंगे न सोचेंगे। इतना ही उम्मीद है कि वायलेंस कम हो तो अच्छा है, इस तरह का रिजीम कभी चल नहीं सकता है।
और क्या करने से जाएगा, आपको क्या लगता है, व्हाट इज द सॉल्यूशन?
ये आप सेंटर से नहीं हैंडल कर सकते हैं, एक कॉमन कंसर्न, एक कॉमन केयर चाहिए। कहाँ है
ये जो ट्रूथ टेलिंग है? अगर कश्मीर में गैग है प्रेस के ऊपर अभी, तो क्या ये ट्रूथ टेलिंग नेशनल मीडिया रिस्पॉन्सिबली कर रहा है इस वक्त, आपको लगता है?
नहीं, क्या न्यूज दे रहे हैं? नो मीडिया इज गिविंग प्रॉपर न्यूज. अब नहीं हो रहा है. अब तीन चार सिक्योरिटी कंसल्टेंट को लाते हैं, वो वही बकवास दोहरा रहे हैं.
ये थे जाने माने समाजशास्त्री शिव विश्वनाथन. और अब एक खास रिपोर्ट. भारतीय राजनीति और नेहरू गांधी परिवार के बीच चोली दामन का रिश्ता रहा है. तीन सदस्य प्रधानमंत्री रहे और कुछ दूसरों ने प्रधानमंत्री बनवाने में अहम भूमिका निभाई. मौजूदा समय में सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्षा हैं और उनके बेटे राहुल गांधी अभी उपाध्यक्ष हैं और जल्द ही उनकी ताजपोशी भी हो सकती है. लेकिन परिवार की तीसरी सदस्य प्रियंका गांधी पर भी सभी की उतनी ही निगाहें रही हैं. प्रियंका पर्दे के पीछे रहना पसंद करती हैं और उनके बारे में बहुत कुछ कम ही लोगों को मालूमात है. बीबीसी हिंदी पर प्रियंका गांधी विशेष का पहला भाग सुनिए नितिन श्रीवास्तव से.
मैं राजीव गांधी की बेटी हूँ.
I did idolize my grandmother. I grew up in a household where she was the head and she was extremely powerful woman.
बुलंद आवाज, तेज चाल और हाजिर जवाब, कुछ ऐसी बताई जाती है प्रियंका गांधी की शख्सियत. बहरहाल सुबह 6 बजे उठने के बाद ट्रेडमिल पर मशक्कत और उसके बाद योग क्रिया. जब भी रायबरेली में होती हैं तो शहर से चंद किलोमीटर दूर भुएमऊ गेस्ट हाउस में प्रियंका का दिन कुछ इस तरह शुरू होता है. पोहे, ब्रेड या कॉर्नफ्लेक्स के नाश्ते के बाद भैया जी यानी प्रियंका लोगों से मिलना शुरू करती हैं और अपने भाई राहुल गांधी के विपरीत उनके लंच का समय बिल्कुल तय नहीं रहता. रोटी या पराठे के साथ सब्जी और दाल, लेकिन साथ में आम या नींबू का अचार उनकी पसंद है. उत्तर प्रदेश में रायबरेली और अमेठी संसदीय क्षेत्रों को गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है और यहाँ किसी भी कांग्रेसी कार्यकर्ता या नेता के मुंह से प्रियंका को देखते ही भैया जी निकल पड़ता है. अमेठी में तिलोई के रहने वाली विजया जायसवाल को प्रियंका के बचपन की भी यादें हैं.
बचपन में आई थी यहाँ, पूछा कि अंकल ये क्या, यहाँ क्या है, यहाँ भीड़ क्यों है? तो कहाँ, यहाँ मजार का मेला लगा हुआ है. तो कुछ बच्चे छोटे छोटे चूड़ी पहन रहे थे, तो कहा अंकल हम भी चूड़ी पहनेंगे. तो उन्होंने जा करके उस दुकान पे चूड़ी भी पहनी.
1999 के बाद प्रियंका गांधी ने अपनी माँ सोनिया के लिए चुनाव प्रचार शुरू कर दिया था. इसी बीच उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा से शादी भी की. करीब दशक भर बाद वे तिलोई पहुंची तो सभी से मुलाकात हुई, जिसमें विजया जायसवाल दोबारा मिली.
तो हम लोगों ने उन्हें चांदी रुपए गिफ्ट किए. तो कहा ये क्या है? तो हमने कहा जब बेटी शादी के बाद पहली बार आती है तो हम लोगों के यहाँ बिना गिफ्ट दिए वापस नहीं किया जाता है. तो कहें थैंक यू और ले लिया उन्होंने.
वर्ष 2004 में रायबरेली चुनाव प्रचार प्रियंका की निगरानी में जारी था. परिवार के एक पुराने करीबी जो अमेठी में थे, उनसे फोन पर कुछ फरमाइशें हुई जिनमें गलावटी कबाब, बिरयानी और कोरमा शामिल था. चंद घंटों बाद खाना पैक होकर गेस्ट हाउस पहुंचा. प्रियंका रॉबर्ट ने खाने के मजे लिए और अपनी शाम की दिल्ली की फ्लाइट के लिए बचा हुआ पैक भी करा लिया. वैसे मलाई चाप और सफेद रसगुल्लों का भी शौक रखने वाली प्रियंका रात को सोने से पहले भुएमऊ या मुंशीगंज गेस्ट हाउस के कई चक्कर लगाना नहीं भूलती. दिल्ली में प्रियंका गांधी ने अपने परिवार को मीडिया की नजर से काफी हद तक बचाकर रखा है, पर बच्चों के साथ फिल्में या प्ले देखना उन्हें पसंद है. भाई राहुल गांधी पर किताब लिख चुके पत्रकार जतिन गांधी बताते हैं,
उनकी प्राइवेट लाइफ बहुत गार्डेड होती हैं. एक तो अपने बच्चों से वो बहुत जुड़ी हुई हैं, तो उनके लिए खाना पकाना, फिर उन जब वो हॉस्टल गए तो पता लगा कि वो ओवरनाइट ट्रेन लेकर के तकरीबन हर वीकेंड जो है अपने बेटे से मिलने, रेहान से मिलने वहाँ चली जाती थी, वो हॉस्टल चले जाती थी. उनके खुद बच्चों के लिए खुद शॉपिंग करना, खाने के लिए खुद कपकेक्स वगैरह बनाना, काफ़ी पर्सनली उन्होंने, उनका रुझान बुद्धिज़्म की तरफ काफ़ी गया. उन्होंने PhD भी, जो उनका सब्जेक्ट जो है वो बुद्धिज्म से रिलेटेड है.
2004 के चुनाव के दौरान रायबरेली के रमेश बहादुर सिंह के घर में रह रही प्रियंका ने उनसे रिक्शे मंगवाए. रमेश उस दिन को आज भी याद करते हैं.
हम तो सोचते हैं यहीं पे लेकर के घर के अंदर ही कंपाउंड के अंदर ही घुमाएंगे. इत्तेफाक से उनका रिक्शा बुलाइए तो दो रिक्शे बुलाइए. पीछे आए तो ऐसे एक रिक्शे पे अपना बैठ गई, बच्चे बैठा लिया, लड़की को अपनी गोद बैठा लिया और चल दी. लौट करके उतरी, अंदर जाने लगी और अंदर जाते जाते फिर लौट के आई. रिक्शा में बाबू पैसा कितना? तो उन्होंने खुद अपने उससे 50-50 रुपया निकाल करके दोनों रिक्शा में.
जाहिर है उनके शुभ चिंतक उनकी तारीफ करते नहीं थकते, लेकिन उनके आलोचक उनके इस सहज अंदाज को बनावटी भी बताते हैं. एक जमाने में प्रियंका के साथ इन क्षेत्रों में काम कर चुके कुछ व्यक्ति तो ये मानते हैं कि प्रियंका की शख्सियत बहुत सुलझी हुई है, लेकिन उनके मन में इसकी गंभीरता को लेकर संदेह भी है. रायबरेली में कांग्रेस के लिए 5 दशक तक काम कर चुके राम सेवक चौधरी को सुनिए।
प्रियंका के साथ तो वो एक राजीव गांधी की बेटी है और उनमें इंदिरा गांधी की झलक दिखती है, तेवर दिखता है, लेकिन वो भी उसका उपयोग नहीं कर पाई। जिस प्रतिभा की वो धनी है उसका भी उपयोग उन्होंने नहीं किया। चुनाव के मौके पर वो आ जाती है, फिर 5 साल खामोश हो जाती, पता ही नहीं चलता कहाँ है, जो कह जाती है वो भी पूरा नहीं करती।
लेकिन इसके विपरीत अमेठी में कांग्रेस के एक साधारण कार्यकर्ता मंसूर अहमद खान जैसे लोग बताते हैं कि प्रियंका उनके लिए भगवान से कम नहीं है और उन्होंने इनकी बीमारी में बिना किसी को बताए इनका दिल्ली के महंगे बत्रा अस्पताल तक में इलाज भी करवाया।
इत्तेफाक था कि मेरा टाका कटना था, उस टाइम हुआ डॉक्टर ने बुलाया था, मैं वहाँ गया तो मैंने रिक्वेस्ट की कि डॉक्टर साहब जो है बहुत गरीब आदमी हूँ, मुझे मैं नहीं कर सकता इतना पैसा। तो डॉक्टर मेरे पास बिगड़ गए, पहले तुमको गरीबी आ रही है, पता है तुम्हारे ऊपर कितना पैसा लग चुका है, 11 लाख रुपए अब तक यहाँ तक लग चुका है, ये गई भी थी मुझे पता भी नहीं था, इन्होंने अस्पताल जाके सब पूरा वो किया था।
स्थानीय लोग इस बात पर भी जोर देते हैं कि प्रियंका की याददाश्त बहुत अच्छी है और वे सभी को नाम से बुलाती हैं। अमेठी के पूर्व राजा और अब कांग्रेस के सांसद संजय सिंह भी इस बात का लोहा मानते हैं।
मुझे लगता है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड और पॉलिटिकल कनेक्टिविटी ये दोनों बड़े बड़ा इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है एक पॉलिटिकल आदमी के लिए, सो मैं समझता हूँ ये सारी चीजें उनमें है।
ऐसे ही नजदीकी रहे एक मुस्लिम परिवार की रसोई से प्रियंका के लिए कभी कभार मुगलई खाना जाता था, लेकिन जब इन शख्स ने प्रियंका से अपने इलाके में एक ट्रेन के स्टॉपेज को लेकर फरियाद लगाई तो प्रियंका के इर्द गिर्द रहने वालों को थोड़ा बुरा लगा, जिसके चलते प्रियंका से इनकी बात 3 साल तक नहीं हो सकी। बातचीत तो अब शुरू हो चुकी है, लेकिन इन शख्स को इस बात का मलाल है कि प्रियंका ने उनसे 3 साल बाद मिलने पर ये नहीं पूछा कि आप 3 साल कहाँ रहे। अब आप तय कीजिए कि प्रियंका की शख्सियत में क्या चीजें बेहतर हैं और क्या नहीं। नितिन श्रीवास्तव, BBC दिल्ली।
और अब वक्त हो चला है अखबारों की समीक्षा का और हमारे साथ है विनीत खरे, तमाम अखबारों के साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बताएं विनीत,
नितिन की रिपोर्ट आपने सुनी प्रियंका गांधी के बारे
में, इसीलिए मेरी जबान से नितिन निकल गया था।
अमर उजाला की खबर है प्रियंका गांधी से जुड़ी हुई, जयराम रमेश का एक बयान है कि सिर्फ प्रियंका नहीं कर सकती कांग्रेस का बेड़ा पार और उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस की सुर्खी है, सरकार ने संसद में कहा वो कश्मीरियों से बात करेगी। अखबार ने पुलिस फायरिंग में 2 और लोगों के मरने की खबर दी है, जिससे मरने वालों की संख्या 42 हो गई है। राज्य में मीडिया पर लगी पाबंदियों पर अखबार से बातचीत में जम्मू और कश्मीर के शिक्षा मंत्री नईम अख्तर ने कहा कि अखबारों से कहा गया है कि वो अखबार छापना शुरू कर सकते हैं और इस पर कोई पाबंदी नहीं है। साथ ही अखबार ने बताया कि घाटी में जारी प्रदर्शनों के कारण कई कश्मीरी पंडित जम्मू की ओर पलायन कर रहे हैं। उनमें से एक सुषमा ने बताया कि घाटी में प्रदर्शनकारी उन्हें निशाना बना रहे हैं, यानी कश्मीरी पंडितों को, और उन पर पेट्रोल बम फेंके गए हैं जिससे उनका 2 साल का बेटा घायल हो गया। कश्मीर में IAS अफसर शाह फैसल ने आज इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि पिछले कुछ सालों से राष्ट्रीय मीडिया का एक हिस्सा कश्मीर में भारत की सोच को गलत तरह से पेश करता रहा है और कश्मीर के बारे में झूठ प्रचारित करता रहा है।
बहुत शुक्रिया विनीत आपका अखबारों की समीक्षा के लिए। और जाते जाते आपको BBC हिंदी ऑनलाइन से खबर बता दूं कि आप ये तो जानते हैं कि बहुत सारे तिब्बती भारत में रहते हैं, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि बहुत सारे तिब्बती अब भारतीय नागरिकता भी लेना चाहते हैं। उनके लिए उन्होंने बाज़ाब्ता आवेदन भी किया है, वो अदालत तक पहुँचे हैं और उन्हें उम्मीद है कि बहुत जल्द ही बहुत सारे तिब्बतियों को भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। और अब वक्त हो चला है प्रमुख समाचार का।
BBC समाचार, प्रदर्शनों और हिंसा की आशंका के बीच अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी का 4 दिवसीय राष्ट्रीय कन्वेंशन क्लीवलैंड में शुरू हुआ है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अरदोगान ने कहा है कि ये कहना कि पिछले हफ्ते सत्ता पलट की कोशिश के बाद वो अपने विरोधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, ये अपमानजनक है। रूस में कई खेलों में सरकार समर्थित धोखाधड़ी के आरोप लगने के बाद उसका अगले महीने शुरू हो रहे ओलंपिक खेलों में शामिल होना सवालों के घेरे में है। दक्षिण कोरिया की सेना ने कहा है कि उत्तर कोरिया ने 3 बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया है जो उसके पूर्वी तट के निकट समुद्र में गिरे हैं। दक्षिण कोरिया ने कहा कि मिसाइलों की मारक क्षमता 500 और 600 किलोमीटर के बीच थी और वो पूरे दक्षिण कोरिया में कहीं भी नुकसान पहुंचा सकती थी। और ब्रिटेन में सांसदों ने देश के पुराने हो चुके परमाणु डेटरेंट को एक नया जीवनदान देने के पक्ष में वोट किया है। ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री थेरेसा मे की कंजर्वेटिव पार्टी ने इसके पक्ष में मत डाले। बीबीसी समाचार।
तो नमस्कार, भारत की यह सभा यहीं समाप्त होती है। आज स्टूडियो की जिम्मेदारी संभाली राजेश चौहान ने। आपसे अगली मुलाकात होगी अभी से ठीक एक घंटे बाद यानी 8 बजे कार्यक्रम विश्व भारती में। लेकिन पल पल बदलती खबरों के लिए आप 24 घंटे आ सकते हैं हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर। और अब इकबाल अहमद को अपने तमाम साथियों के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।